ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 25 करोड़ रुपए की लागत से दंतेवाड़ा में स्थापित की जाएगी प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज इकाई केंद्र, सरकार ने दी मंजूरी। तेलंगाना के कोठागुड़ेम से छत्तीसगढ़ के किरंदुल तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का सर्वे अंतिम चरण में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रक्त शक्ति महाअभियान के तहत एक ही दिन में की गई 51,000 से अधिक महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। और छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रथ यात्रा का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा जिले में 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से चर्चा कर स्वीकृति प्रदान करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना देश में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पहली ऐसी सरकारी पहल है जो उपजों के परिरक्षण और उनकी बाजार तक पहुंच को आसान बनाएगी। तेलंगाना के कोंडागुड़ेम से छत्तीसगढ़ के किरंदुल तक प्रस्तावित करीब 160 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का सर्वे अब अंतिम चरण में है। इस प्रस्तावित रेल लाइन का 138 किलोमीटर हिस्सा सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जो अब तक रेल कनेक्टिविटी से वंचित रहे हैं। रेलवे द्वारा अत्याधुनिक लिडार तकनीक के माध्यम से सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस रेल लाइन परियोजना की निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसे आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जशपुर में कृषि क्रांति अभियान के तहत कल 28 जून से दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिले के किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार से जोड़कर उनके उत्पादों को बेहतर दाम दिलाना है। जिले में कृषि, उद्यानिकी और रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पहली बार एग्री हॉटी क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले ने रक्त शक्ति महाअभियान के तहत एक ही दिन में 13 से 45 वर्ष आयु वर्ग की 51,000 से अधिक महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्टेट हेड सोनल राजेश शर्मा ने आज पेंड्रा में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कलेक्टर ने बताया कि आदिवासी बहुल इस जिले में महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव रहा है। शरीर में रक्त की कमी होने से बहुत सारे समस्याएं होती हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान 26 जून को जिले भर के 230 अलग अलग स्थानों पर चलाया गया।
26 तारीख को हमने रक्त शक्ति महाअभियान के नाम से एक महाअभियान चलाया था, जिस जो हमारी 13 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं उनका एचबी टेस्ट करने का लक्ष्य रखा था और टोटल 51,727 महिलाओं का एक ही दिन में हमने एचबी जांच किया है।
रक्त शक्ति महाअभियान का उद्देश्य महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। 25 जून 1975 को देश भर में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिन्हें मीसाबंदी कहा जाता है। आपातकाल के विरोध में देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। मीसाबंदी ईश्वर प्रसाद बघेल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि आपातकाल का दौर बड़ा कष्ट भरा रहा।
आज तो हम बहुत अपने को आजाद समझ रहे हैं, उसमें आजाद तो थे नहीं, बहुत कष्ट था वहाँ। जब गिरफ्तारी हुई तो हम लोगों को तो उसी दिन, जिस दिन मिसा लगा था उसी दिन ले गया था, जिससे बाहर का माहौल मेरे को पता ही नहीं चलता था। जेल में हम लोग को पता चलता था कि बाहर में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, और हम लोग समझ गए थे जेल में कि हम लोग अब जेल में ही रहेंगे, यहाँ से नहीं छूटेंगे, माने हो सकता है यहीं ये लोग मर्डर भी कर डाले, ऐसा लगता था।
वहीं उनकी बेटी अनीशा बघेल ने बताया कि आपातकाल के दौर में न केवल उनके पिता ने बल्कि परिवार ने परेशानी झेली।
पापा श्री ईश्वर प्रसाद बघेल जी थे उस समय मीसाबंदी में, अभी भी हैं। मेरा बर्थडे था उस समय और वो वहाँ जेल में थे, मेरी मम्मी बाहर में थी, तो उस समय उनको बहुत कष्ट हुआ करता था, कोई उनको हेल्प नहीं करता था। इंदिरा गवर्नमेंट उस समय मीसाबंदी लगाई हुई थी। मीसाबंदी में ऐसा था कि कोई भी अगर उसके हेल्प करेगा उसके परिवार को तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तक हम लोग उस चीज को अनुभव कर रहे हैं, उस दर्द को सह रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। साहित्यकार और छत्तीसगढ़ी भाषा के जाने माने हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का आज रायपुर के माड़वाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, गृहमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक सुनील सोनी, अनुज शर्मा और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। वहीं कवि कुमार विश्वास, सूफी भजन गायक पद्मश्री मदन चौहान, कवि सुदीप भोला सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। गौरतलब है कि कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का कल हृदयाघात से निधन हो गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल डॉक्टर दुबे के निवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नारायणपुर जिले में 6 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल हैं। ये सभी माओवादी जिले के माड़ डिवीजन और अमदेई एरिया कमेटी में सक्रिय थे। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रूपये का चेक प्रदान किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी जिले के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन 22 और 23 जुलाई को किया जाएगा। स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 25 से 31 जुलाई तक की जाएगी। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस मौके पर विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ पर सवार यात्रा निकाली गई। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने भगवान के प्रथम सेवक के रूप में छेरा पहरा की रस्म निभाई। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है उतना ही छत्तीसगढ़ के लिए भी है। रथ यात्रा महोत्सव में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे। जगदलपुर के सीरासार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में बस्तर के तुपकी की गर्जना के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद जब 27 विग्रहों को 3 रथों में आरूढ़ कर निकाला गया तब परंपरा अनुसार पूर्व राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने रथ के आगे झाड़ू लगाकर छेरा पहरा की रस्म निभाई। रथ यात्रा रहा परिक्रमा पथ पर एक चक्कर लगाने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को सिरा भवन में स्थित गुणीचा मंडप में स्थापित किया गया। गुणीचा मंडप में आगामी 9 दिनों तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले गोंचा महापर्व के तहत 26 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान संपन्न किया गया। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार संविधान हत्या दिवस पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 28 जून को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से और प्राइमरी चैनल पर सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 30 जून को दोपहर 12 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। राज्यपाल और कुलाधिपति रमेन डेका ने प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रायपुर का निर्देशक नियुक्त किया है। और महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर बीती रात तुमगांव के पास एक मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 25 करोड़ रुपए की लागत से दंतेवाड़ा में स्थापित की जाएगी प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज इकाई, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। तेलंगाना के कोठागुड़ेम से छत्तीसगढ़ के किरंदुल तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का सर्वे अंतिम चरण में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रक्त शक्ति महाअभियान के तहत एक ही दिन में की गई 51,000 से अधिक महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। और छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रथ यात्रा का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।